नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के विकास की गति और जापान की विशेषज्ञता वैश्विक आर्थिक वृद्धि के लिए प्रेरक शक्ति का काम करेगी। श्री मोदी ने नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्ता की। भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की। पश्चिम एशिया संकट के बीच सरकार अगले एक वर्ष में तेल शोधन क्षमता बढ़ाकर सालाना 30 करोड़ मीट्रिक टन करेगी। केंद्र ने देश भर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल शुरू किया। मौसम विभाग ने पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया और फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 मुकाबले में स्पेन और ऑस्ट्रिया होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में आज भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होता है।
भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की 2/3 कार्स भारत में बनती है और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों पर समझौते किए हैं। ये समझौते दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाएंगे। श्री मोदी ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।
आज आर्थिक दुनिया सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है, लेकिन जैसे कहा जाता है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलोसॉफी यानी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट अपनाते हुए अपने इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।
प्रधानमंत्री ने कहा कि आज के समय में सामूहिक विश्वास सबसे बड़ी संपत्ति है और भारत जापान की द्विपक्षीय साझेदारी समय की कसौटी पर खरी उतरी है। श्री मोदी ने कहा कि जापान की सटीक प्रौद्योगिकी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमताओं का संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति प्रदान करेगा।
प्रधानमंत्री ताकाइची और मेरा विश्वास है कि टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी। इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने ज्वाइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानीज पार्टनर के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं।
भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की है। दोनों देशों ने एशिया में जिम्मेदार शक्तियों और प्रमुख ऊर्जा उपभोक्ता के रूप में ऊर्जा सुगमता को संयुक्त रूप से मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की साझा इच्छा व्यक्त की। भारत का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा जापान का अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय विभिन्न पहलों पर सहयोग करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष के वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद से 120 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
नेताओं ने व्यापार और निवेश, आर्थिक सुरक्षा, रक्षा, सप्लाई चेन की मजबूती, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और लोगों के बीच आपसी आदान प्रदान जैसे कई क्षेत्रों में हमारे द्विपक्षीय संबंधों की मजबूत नींव पर चर्चा की। साथ ही दोनों नेताओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र और उससे अलग शांति, समृद्धि और स्थिरता सुनिश्चित करने में विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की भूमिका को स्वीकार किया।
वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि निवेश भारत और जापान की रणनीतिक साझेदारी का एक प्रमुख संचालक बनकर उभरा है। वे आज एक निजी टेलीविजन चैनल द्वारा आयोजित एशियाई सदी को आकार देने संबंधी विषय पर भारत जापान रणनीतिक संवाद को संबोधित कर रहे थे।
ट्रेड ऑल्सो इज एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ दिस पार्टनरशिप।
भारत के कुशल कार्यबल के लिए अवसर खुल रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार का ध्यान सभी के लिए समान विकास सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। निवेश भारत और जापान की रणनीतिक साझेदारी का एक प्रमुख संचालक बनकर उभरा है और इससे द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूती मिलने की उम्मीद है।
ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट डायमेंशन।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत अपनी रिफाइनरी क्षमता का तेजी से विस्तार कर रहा है। नई दिल्ली में श्री पुरी ने बताया कि अगले 6 से 12 महीनों में देश की तेल शोधन क्षमता को 30 करोड़ मीट्रिक टन प्रतिवर्ष तक बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष की स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने लंबे समय तक पेट्रोल और डीजल की कीमतों को नियंत्रित किया। श्री पुरी ने कहा कि पिछले 4 वर्षों में पेट्रोल की कीमत में केवल 5.58% और डीजल की कीमतों में 6.23% की ही वृद्धि हुई है। नागर विमानन मंत्रालय ने देशभर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड के सहयोग से इस उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य स्वास्थ्य, आव्रजन और निगरानी एजेंसियों के बीच समन्वय के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की स्वास्थ्य निगरानी को मजबूत करना है, ताकि जोखिम वाले यात्रियों का शीघ्र पता लगाया जा सके। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के विधायी और संसदीय प्रणाली से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य प्रणाली के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। भारतीय रेलवे ने इस वर्ष जून में पिछले वर्ष इसी महीने की तुलना में माल ढुलाई में 4% की वृद्धि दर्ज की है। रेल मंत्रालय ने बताया कि रेलवे ने पिछले महीने 142 करोड़ टन से अधिक माल की ढुलाई की। इस वर्ष जून में यात्री आवागमन में भी लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। पंचायती राज मंत्रालय कल नई दिल्ली में विभिन्न राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया जाएगा। कोयला मंत्रालय ने कोयला खंड आवंटियों को अधिक वित्तीय सुविधा प्रदान करने और कोयला क्षेत्र में व्यापार को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण सुधार प्रस्तुत किया है। कोयला खंड आवंटन संशोधन नियम 2026 के अंतर्गत मंत्रालय ने कोयला खंड और खनिज विकास तथा विनियमन अधिनियम 1957 के अंतर्गत आवंटित कोयला खंडों के लिए निष्पादन बैंक गारंटी के स्थान पर बीमा गारंटी बॉन्ड के उपयोग को सक्षम बनाया है। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों के राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरिटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता ग्रैंड आयतुल्ला सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि समारोह में उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यतागत संबंधों के महत्व को रेखांकित करती है। केरलम में शिक्षण संस्थानों को निशाना बनाने वाले नशीले पदार्थों के गिरोहों पर राज्य पुलिस की कार्रवाई में 30 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की अवैध दवाएं जब्त की गई हैं। केरलम पुलिस के अनुसार अधिकारियों ने राज्य में 5,353 मामले दर्ज किए हैं और 5,736 लोगों को गिरफ्तार किया। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 5 से 18 वर्ष के बच्चों की असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रदान किए जाते हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा नगर निगम ने स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठा अभियान शुरू किया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2026-27 के अंतर्गत खंडवा नगर निगम ने पॉलीथीन लाओ चाय पाओ नाम की एक पहल शुरू की है। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों को एक बार इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूक बनाना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था आज कड़ी सुरक्षा के बीच अनंतनाग जिले के पहलगाम क्षेत्र में नुनवान और गांदरबल जिले के बालताल स्थित दोहरे शिविरों में पहुंचा। एक रिपोर्ट।
यात्रियों का पहला जत्था आज दोपहर कड़ी सुरक्षा के बीच कश्मीर घाटी पहुंचा। पहले जत्थे में 4,822 यात्री शामिल हैं। इसमें से 2,510 यात्री पहलगाम के रास्ते से यात्रा करेंगे, जबकि 2,312 यात्री बालतल से होते हुए बाबा बर्फानी की गुफा का रुख करेंगे। नुनवन और बालतल कैंप पहुंचते ही प्रशासन ने यात्रियों का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। यात्रा के मद्देनजर दोनों रास्तों पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। दोनों रास्तों पर पुलिस, अर्धसैनिक बलों और आर्मी जवानों की बड़ी संख्या में तैनाती की गई है। इसके अलावा चिकित्सा सुविधाएं, मौसम की जानकारी के लिए प्रणाली, अहम जगहों पर क्विक रेस्पॉन्स टीमें, बड़े पैमाने पर सीसीटीवी निगरानी और आरएफआईडी आधारित प्रणाली भी लगाई गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं इश्फाक शाह।
अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि राज्य में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जमीनी आकलन जारी है और इसके पूरा होने पर केंद्र सरकार को एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपी जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य आपदा मोचन बल SDRF और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF के मानदंडों के अनुसार राहत सहायता प्रदान की जाएगी। मौसम विभाग ने पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है।
विभाग ने अगले 2-3 दिनों में गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भारी से बहुत भारी वर्षा का अनुमान लगाया है। इसी दौरान छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, राजस्थान, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, केरल, माहे, उत्तराखंड और विदर्भ में भी मौसम की ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। मौसम विभाग ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा। हालांकि दिल्ली में अगले 24 घंटों के दौरान आसमान में बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने की संभावना है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
और अब कुछ खेल खबरें। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात इंगलवुड के लॉस एंजल्स स्टेडियम में स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। वहीं टोरंटो में पुर्तगाल का मुकाबला क्रोएशिया से होगा। कल सुबह वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और अल्जीरिया आमने सामने होंगे। स्क्वाश में विल्वन सेंथिल कुमार और तन्वी खन्ना ने मुंबई में PSA चैलेंजर टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सेंथिल कुमार ने मिस्र के अब्दुल्ला हाफिज को जबकि तन्वी ने जापान की जोई फू को हराया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के विकास की गति और जापान की विशेषज्ञता वैश्विक आर्थिक वृद्धि के लिए प्रेरक शक्ति का काम करेगी। श्री मोदी ने नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्ता की। भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की। पश्चिम एशिया संकट के बीच सरकार अगले एक वर्ष में तेल शोधन क्षमता बढ़ाकर सालाना 30 करोड़ मीट्रिक टन करेगी। केंद्र ने देश भर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल शुरू किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।